Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Lord Rishabhdev's Teachings, Text 2. Mahatsevam dvaram ahur vimuktes, tamo dvaram yoshitam sanghi sangam, mahantaste samachitta prashanta, vimanyavah suhida sadhavoye. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. One can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to highly advanced spiritual personalities. These personalities are impersonalists and devotees. Whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the personality of Godhead, one should render service to the Mahatmas. For those who are not interested in such activities, who associate with people fond of women and sex, the path to hell is wide open. The Mahatmas are equipoised. They do not see any difference between one living entity and another. They are very peaceful and are fully engaged in devotional service. They are devoid of anger and they work for the benefit of everyone. They do not behave in any abominable way. Such people are known as Mahatmas. Purport. The human body is like a junction. One may either take the path of liberation or the path leading to a hellish condition. How one can take these paths is described herein. On the path of liberation, one associates with Mahatmas, and on the path of bondage, one associates with those attached to sense gratification and women. There are two types of Mahatmas, the impersonalist and the devotee. Although their ultimate goal is different, the process of emancipation is almost the same. Both want eternal happiness. One seeks happiness in impersonal Brahman and the other seeks happiness in the association of the Supreme Personality of Godhead. As described in the first verse, Brahma Sakhyam. Brahman means spiritual or eternal. Both the impersonalist and the devotee seek eternal blissful life. In any case, it is advised that one become perfect. In the words of Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2287, Asat Sanga Tyaga Avaishnav Achar Stri Sangi Ek Asadhu Krishna Bhakta Ar. To remain unattached to the modes of material nature, one should avoid associating with those who are asat, that is, materialistic. There are two kinds of materialists. One is attached to women and sense gratification, and the other is simply a non-devotee. On the positive side is association with Mahatmas, and on the negative side is the avoidance of non-devotees and women hunters. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इस अध्याय के पहले श्लोक में ऋषभदेव अपने पुत्रों को संदेश देते हैं कि मात्र इंद्रिय भोग के लिए कुकर सुकर की तरह से नहीं जीना चाहिए मनुष्यों को, बल्कि उन्हें दिव्य तपस्या करनी चाहिए जिससे कि वो अपने को शुद्ध कर सकें और ब्रह्म सुख जो अनंत है उसको प्राप्त कर सकें। आज के इस श्लोक में ये करने के लिए क्या करना होगा, उसका पहला चरण क्या है, वो समझा रहे हैं। तो यदि हमें कुकर सुकर की तरह नहीं रहना है
और यदि हमें ब्रह्म सुख प्राप्त करना है, दिव्य तपस्या करनी है, तो उसका प्रारंभ कहां से होता है? प्रारंभ उसका मध्य और हमेशा नित्य रूप से महत् सेवा, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते। द्वार, द्वार मतलब गेटवे, विमुक्ति लिबरेशन, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, उसका द्वार है महत् सेवाम, महाजनों की सेवा। और तमो द्वारम, नरक का द्वार क्या है? योषिताम संगी संगम, असत लोगों का संग। और फिर समझाया है कि महाजन को कैसे पहचानेंगे, जिनका संग हमें करना है महत, उनको कैसे पहचानेंगे, उनके लक्षण क्या होंगे? महांतस्ते समचित्ताहा, वो समचित्त होंगे। द्वंद जो है इस भौतिक जगत का, सुख दुख, मेरा पराया, इस सब से परे होंगे। प्रशांता, भौतिक इच्छाओं से रहित होंगे। विमन्यवः, यानी कि क्रोध से रहित होंगे। अर्थात भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए स्वयं अपने ऊपर कुछ भी कष्ट आए अन्यों के द्वारा, वो उससे विचलित नहीं होंगे। सुहृदः, सुहृद मतलब सभी के हितैषी, इसलिए हमेशा दूसरों का हित करने का प्रयास करने वाले होंगे। साधवः, और उनका व्यवहार बहुत ही आदर्श होगा, यानी इंद्रियों पर उनका संयमन होगा। ये लक्षण हैं महाजनों के। तो मुक्ति के पथ पे यहां पर ऋषभदेव कह रहे हैं कि सबसे आधारभूत चीज है हमारा संग कैसा है। उसमें भी विशेष रूप से जो महाजन है उनका संग जो है वो नितांत आवश्यक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए। कहीं ना कहीं तो हमको संग करना ही पड़ता है, हम तो अकेले तो रह नहीं सकते, मनुष्य समाज में रहते हैं, हमें एसोसिएशन तो चाहिए स्वभाव से, क्योंकि हम जीव हैं, हम व्यक्ति हैं, इसलिए हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ रिलेशनशिप रखना स्वाभाविक है। तो इसलिए चॉइस केवल यही है कि हम सत्संग करेंगे असत्संग करेंगे, यही चॉइस है, बिना संग के रहना वो संभव नहीं है। तो यदि हम सत्संग नहीं करेंगे तो असत्संग करेंगे, इसलिए अपने आप हमें प्रयास करना होगा सत्संग करने का, और असत्संग से दूर जाने का प्रयास करना होगा। असत्संग क्या है? जो भी इस भौतिक जगत को अपने भोग की सामग्री मानते हैं और अपने को भोक्ता मानते हैं वो सब असत हैं। यहां पर परिभाषा दी है चैतन्य चेतावनी में, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त आर। दो प्रकार के मुख्य रूप से असत्संगी होते हैं, एक जो इंद्रिय भोग ही जिनका लक्ष्य होता है जीवन का, मेटलिस्ट, उसमें पराकाष्ठा है जो लोग स्त्री से आसक्त होते हैं, विमेन हंटर्स रूपा बोलते हैं, जिनके जीवन में अनकंट्रोल्ड सेक्स लाइफ, ऐसे लोग एक मुख्य है, वो इंद्रिय भोग की पराकाष्ठा है। तो स्त्री संगी ऐसे जो इल्लीगल सेक्सुअल बिहेवियर रखते हैं, और दूसरा जो भगवान के भक्त नहीं है, भले ही वो स्त्रियों से आसक्त ना हो, जैसे कि मायावादी भी हो सकते हैं। तो भक्तों के लिए, भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए, तो मायावादी जो भी हैं वो ग्रॉस स्तर पे, स्थूल स्तर पे इंद्रिय भोग में लिप्त नहीं होते हैं, तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अभक्त हैं इसलिए उनका संग भी भक्तों के लिए सही नहीं है। स्त्री संगी एक साधु कृष्णा भक्त आर। तो अभी समाज में दुर्भाग्य से अधिकतर लोग तो इसी कैटेगरी में आते हैं, असत संगी, या तो वो भक्त नहीं है कृष्ण के, और या तो दोनों ही, जनरली दोनों ही हैं, भक्त भी नहीं हैं और इंद्रिय भोगी हैं, मेटेलिस्ट हैं, भौतिकतावादी, उनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय भोग करना। मेजोरिटी ऑफ पीपल इसमें आ गए। तो ऐसे सभी लोगों का संग जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे असत लोगों का संग करने से अच्छा है कि चारों तरफ आग लगा के बैठ जाओ गर्मी में, उससे संग से अच्छा ये है। वो तपस्या, वो कष्ट लेना ज़्यादा अच्छा है इस कष्ट से, असत लोगों के संग करने से, क्योंकि ये विज्ञान है। हमारे जैसा हम संग करते हैं उसके अनुसार हमारे पर प्रभाव पड़ता है। अभी संग करने का मतलब एक सामाजिक स्तर पर किसी से बात करना उस प्रकार से नहीं है, लेकिन संघ का अर्थ है जहाँ पर घनिष्ठ संबंध हो और जहाँ पर मुख्य रूप से हम उनकी सेवा कर रहे हों, उनसे सुन रहे हों, उनका सम्मान कर रहे हों, इस दृष्टि से कि उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, इस प्रकार से संघ बनता है। अभी हम असत लोगों के बीच में रह रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बिल्कुल नॉट लाइक दैट। जैसे अभी आप अपने कॉलेज में हैं तो सब आपके क्लासमेट्स और टीचर्स सब असत संगी ही हैं। सो एसोसिएशन का छोड़ने का अर्थ एग्जैक्टली इस तरह से नहीं है कि वी कैन नॉट स्पीक टू देम, वी कैन नॉट टॉक टू देम, लेकिन वो एक सामाजिक स्तर पे, हम समाज में रह रहे हैं, वो भी समाज में रह रहे हैं, इस दृष्टि से एक सामाजिक आवश्यकता के लिए जितना जरूरी है उतना ठीक है। हमें पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन घनिष्ठ संबंध नहीं होना चाहिए। घनिष्ठ संबंध छह प्रकार से स्थापित होता है। ददाति प्रतिज्ञाति भुंगते भोजायते गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो कुछ गिफ्ट्स स्वीकार करना, कुछ गिफ्ट्स देना, भोजन खिलाना, भोजन ग्रहण करना दूसरों के हाथ से, और अपने हृदय की अभिलाषा, इच्छा, विचार को व्यक्त करना और दूसरे के हृदय की बातों को सुनना, ये छह प्रकार के लेन देन से संबंध घनिष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार के जो ये घनिष्ठ संबंध है वो हमें अभक्तों से नहीं करना चाहिए। हम उनसे केवल एक सामाजिक जितनी आवश्यकता है उतना काम से काम चलाने के जरूरी है वो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी दुर्भाग्य ये है कि जब हम समाज पे इस आधुनिक लोगों के ऊपर आश्रित रहते हैं तो हम वो घनिष्ठता आ ही जाती है, उसको दूर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आप अभी जॉब कर रहे हैं कोई, तो जो आपके जो इंचार्ज हैं, बॉस हैं, तो वो जनरली सामान्य रूप से तो ऐसे ही असत संगी होंगे, तो आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं महत सेवा की जगह। तो जब वो आपके बॉस हैं, आप उनके द्वारा कंट्रोल्ड हैं, तो उनका आपको सुनना ही पड़ता है, और क्योंकि आप उन पर आश्रित हैं तो आश्रित होने की वजह से वो उनके संग से हम प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम विवश होते हैं उनसे सुनने के लिए और जैसा वो कहें वैसा करने के लिए। तो धीरे 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 वो चीज़ हमें प्रभावित करने लगती है। इसलिए भक्तों के समाज में रहना अच्छा है। जैसे अभी आप, हम लोग यहाँ रह रहे हैं ये इस हॉस्टल के अंदर, तो इसी से आप देख सकते हैं आप लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया होगा कंपेयर टू जब आप बाहर रह रहे थे। अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस चीज़ को अभी? तो इस प्रकार से अगर हम, हमारा रहने का, हमारा, और केवल रहने की बात नहीं है, अगर हमारा पूरा आश्रित हमें नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, आश्रित हमारे वो स्वामी नहीं होने चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हम भक्तों के ही समाज में रह पाएं, जहाँ पर हमारी जीविकोपार्जन के लिए भी हमें अभक्तों के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़े, क्योंकि सभी को अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना होगा, जो भी गृहस्थ हैं उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ करना होगा। तो अगर जीविकोपार्जन करने के लिए हमें अभक्तों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा, तो फिर उनका असत्संग लेने के लिए हम विवश होंगे, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, उनकी बकवास सुननी पड़ेगी। जैसे मुझे याद है जब हम मेडिकल में पढ़ते थे इंटर्नशिप में, तो अभी वो टीचर हैं हमारे, कहीं भी कुछ पार्टी है तो जा कर के बैठना है, नहीं आएंगे तो उनको अजीब लगेगा, कुछ खाएंगे नहीं तो अजीब लगेगा, और बैठ के उनकी बातों को सुनना है, और फिर गर्दन लानी है, हंसना भी है। सो वो सब बहुत चेतना को प्रभावित करता है। अभी ये हम लोग हर सुबह ये पढ़ते हैं कक्षा में, कुछ आधा घंटा ही पढ़ते हैं, तो उससे ही हम देख सकते हैं कि कितना हमको प्रभाव पड़ता है। हम हरे कृष्णा सब बैठ करके जप करते हैं, वो हरे कृष्ण ध्वनि सुनने से हमारा चित्त स्वच्छ होता है, ये हम अनुभव कर सकते हैं। तो इसका ये बहुत असर पड़ता है संघ का। अगर यही भक्ति हम अकेले अलग कर रहे होते तो क्या कर पाते। जैसे वो स्टूडेंट था, वो क्या नाम, ओम, तो वो यहाँ तले रहता था, लेकिन फिर किसी कारण से चला गया। तो जब तक यहाँ था तो वो कितने अच्छे से प्रगति कर रहा था, वो रेगुलर पढ़ रहा था और उसका उत्साह बढ़ रहा था। और अभी वो बाहर रहने गया तो शुशु में ऐसे था कि मैं अभी अपने यहाँ वहाँ रह करके मैं अभी भक्ति करूँगा, मैं वही सब जप यहीं रह के करूँगा। लेकिन अभी उसको पूछो वो कितना जप कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, सब जीरो हो गया होगा, इज नॉट कमिंग एट ऑल। तो ये विज्ञान है, इसलिए जो भी शास्त्रों में दिया है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। हमें अपने को ओवर इंटेलिजेंट नहीं समझना चाहिए कि ठीक है मैं अपने हिसाब से अपना रास्ता चुन लूँगा, ऐसा नहीं होगा। ये महाजनों के द्वारा लिखे गए वाक्य हैं, अनुभव किए हुए वाक्य हैं, भगवान के द्वारा दिए गए वाक्य हैं, तो इसलिए इनके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो जब बताया गया है कि असत संग से बचना है तो हमें उसके लिए प्रयास करना ही होगा, नहीं तो उसके लिए उसके द्वारा प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाएंगे। और सत्संग करना है तो वो उसके लिए भरसक प्रयास होना ही चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद ने ये इस्कॉन सोसाइटी बनाई, जिससे कि जो लोग भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं वो एक साथ में रह सकें, दे कैन एसोसिएट विद ईच अदर। विशेष रूप से कलयुग में संघ में शक्ति है, माया बहुत प्रभावशाली है, हम अकेले उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन जब हम मिलकर के एक साथ प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति करने का, तो हमारे एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे से स्फूर्ति लेकर के, उत्साह लेकर के, हमारे सबका उत्साह ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए वो जीवन भर ये जो सिद्धांत आज के श्लोक में बताया है, यदि इस चीज़ को हम लोग समझ लें और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, तो फिर आगे के जो स्टेप्स हैं भक्ति के, वो एक के बाद एक के बाद एक अपने आप आएंगे। लेकिन यदि ये स्टेप मिस हुआ, साधु संग छुटा और असत संग हुआ, तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भगवान की जो शक्ति है वो तो महाजनों के माध्यम से ही हम तक पहुंच रही है। तो जैसे भगवान ने रास्ता बता दिया कि साधु संग कीजिए, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे भक्त एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को मेरे विषय में कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, स्मर्तव्य स्मार्तव्य स्मरण करते हैं, स्मरण कराते हैं। तो नाउ वी हैव टू प्लान, हमारा जो पूरा जीवन है अभी अभी ये फॉर्मेटिव टाइम है ना आपका, अभी आपको पूरा जीवन का दिशा निर्देशन करना है, ये युवावस्था का प्रारंभ है आप लोगों का, इसमें आपको पूरा आगे के जीवन का निर्देशन देना है। तो अभी ये चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे और उसके अनुसार फिर अपनी बुद्धि लगाएंगे और दृढ़ संकल्प के साथ इन सिद्धांतों को अपने जीवन में बनाने का प्रयास करेंगे, तो फिर उसका परिणाम होगा कि आप जो यहाँ अभीष्ट फल दिया है भगवत प्राप्ति, वो होगा। और अगर हम केवल थ्योरी सुन करके चले जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो फिर उसका परिणाम अलग होगा। ईशोपनिषद में बताया है विद्या के अनुशीलन का परिणाम अलग होता है, अविद्या के अनुशीलन का अलग होता है, सब एक जैसा नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव बचाम्य हम। तो अब जिस अनुपात में हम ये संदेश को इनको अपने जीवन में अपनाएंगे, उस अनुपात में हमारी प्रगति होगी। तो बहुत सारे विडंबनाएं, बहुत सारे उत्पात और विघ्न रास्ते में आएंगे साधु संग करने के, ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी हमारे जीवन में जो कि हमें रोकेंगी साधु संग करने के लिए। सो कृष्ण, तो अभी वो सब परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में भी हमें लड़ना है। बेसिकली जो हमारा जो भक्तिमय जीवन है उसमें लड़ाई है, लड़ाई माया के साथ में लड़ाई है। परिस्थितियों से लड़ाई है। सोल्जर, वी हैव टू बिकम ऑल सोल्जर्स, रियल टाइम फाइट, ये रियल फाइट यही है। माया हमेशा प्रयास करेगी हमें अपने रास्ते से भटकाने का। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होंगी सो मेनी वेज। माइंड, परिस्थितियां एक बात है, फिर एक अंदर भी है माइंड। बाहर ठीक है लेकिन अंदर भी बवंडर मच सकता है माइंड। सो मेनी वेज माया विल डिस्टर्ब अस। सो अभी देन वी हैव टू संकल्प, वो दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना है कि कैसे ये सत्संग करना है, असत्संग करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है और अपना पूरा भरसक प्रयास करना है। लेकिन परिणाम तो होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मान लीजिए हम विवश भी हैं, असत्संग साधु संग नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका परिणाम होगा। तो उसमें फिर हमें बहुत अधिक हृदय से प्रार्थना करनी होगी भगवान से, और अधिक, कि भगवान मैं साधु संग नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। अंततः हम हमेशा साधु संग प्राप्त कर सकते हैं कहीं पर भी, ये बात भी है, क्योंकि भगवान का नाम हमेशा हमारे साथ है और भगवान के भक्तों के साथ संग केवल फिजिकल लेवल पर नहीं होता है, अंततः वाणी सेवा, उनकी वाणी की सेवा करके भी वो संग होता है। जैसे कि श्री प्रभुपाद अमेरिका गए तो कौन था वहाँ संग करने के लिए, लेकिन वो हमेशा अपने गुरु महाराज और सभी पूर्ववर्ती आचार्यों का संग करते रहे, क्योंकि वो वाणी की सेवा कर रहे थे उनकी। और फिर श्री प्रभुपाद ने तो पूरी सोसाइटी बना करके लिए सबके लिए संग उपस्थित कर दिया। लेकिन श्री प्रभुपाद बहुत एक महाभागवत हैं, तो हमारी क्षमता उन जैसी नहीं है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है एक ज़्यादा स्पष्ट रूप से साधु संघ की, जिसमें हम फिजिकल लेवल पर भी श्रवण कर सकें और लाइक दैट। तो मॉडर्न ये जो सिटी लाइफ है उसमें काफ़ी कठिनाई है साधु संग करने में, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं आसुरी जीवन पर। इसलिए एक बहुत मास्टर प्लान श्री प्रभुपाद ने दिया है ये असत संग को छोड़ने का, डिवोटीज के लिए, एंड दैट इज दिस फार्म कम्युनिटीज, इट्स अ मास्टर प्लान। जैसे जो लोग भी बेस में आते हैं स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में हम एल एन सी टी में जो बहुत इंटरेस्ट से आगे बढ़ रहे थे।
सभी ईयर्स में मुझे याद है ऐसे स्टूडेंट्स से जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन किसी कारण से वो लोग यहाँ नहीं आए। किसी के पिताजी ने मना कर दिया, किसी के इसने ऐसे, दे हैड इंटरेस्ट लाइक दैट ओम रमनी। सो उसके बाद में उनका फिर धीरे धीरे अता पता सब खत्म हो गया। और लोग जो यहाँ आते हैं जनरली दे मेक गुड प्रोग्रेस टुवर्ड्स कृष्णा। तो उसी प्रकार से जो भी भक्त लोग डिवोटी एसोसिएशन में रह पाते हैं जीवन भर, या तो ब्रह्मचारी हैं तो आश्रम में रहते हैं, या तो गृहस्थ हैं तो फार्म कम्युनिटीज़ में रहते हैं। तो हम देख रहे हैं जो लोग भी फार्म कम्युनिटीज़ में गृहस्थ आते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं और उनकी बहुत सुदृढ़ प्रगति होती है, क्योंकि असत्संग छूट जाता है और सत्संग बहुत बढ़ जाता है। बहुत अनुकूल वातावरण उपस्थित होता है, हर दिन भक्तों के साथ में मंगला आरती, जप और आश्रित नहीं है अभक्तों के ऊपर, इसलिए इसका बहुत अधिक प्रभाव हम देख रहे हैं व्यावहारिक रूप से। तो इसलिए ये प्रभुपाद की मास्टर प्लान है। इसलिए हालांकि ये बड़ा क्रांतिकारी विचार है, लेकिन भगवान के पास जहाँ तो क्रांतिकारी ही है ना वो तो वैसे कहाँ आसान चीज़ है। इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवत धाम जाना तो क्रांतिकारी ही होगा। नॉर्मल कोर्स में तो हम यहीं रहेंगे, भगवत धाम जाएंगे नहीं। अगर सामान्य लोग जैसा चल रहे हैं उससे थोड़ा बहुत 19-20 कदम उठाएंगे तो फिर यहीं रहेंगे। तो इसलिए भगवत धाम जाना तो इट नीड्स रेवोल्यूशन, इट नीड्स ग्रेट डिटर्मिनेशन, महत्वता उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो मास्टर प्लान है कि अगर कोई ब्रह्मचारी है तो आसान है, ठीक है, ब्रह्मचारियों के संग में प्रचार करे रह करके आश्रम में। लेकिन गृहस्थों के लिए भी ये संभव है कि वो हमेशा से साधु संग में रहें ये फार्म कम्युनिटीज़ के द्वारा, क्योंकि इन फार्म कम्युनिटीज़ में क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है। क्योंकि बेसिकली ये जो पूरा सिटी लाइफ है ये कैसे डेवलप हुआ है, ये इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट है, अर्थव्यवस्था के लिए ही प्राइमरली ये सब डेवलप हुआ है। सिटीज लाइफ, जॉब्स हैं, सब लोग गांव से शहर में क्यों आए, टू अर्न मोर मनी, दैट्स इट। तो बेसिकली ये पूरा जो मॉडर्न लाइफ है उसको तो पैसा ही पैसा है, वहाँ तो और कुछ है ही नहीं, पैसा 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 पैसा, एवरीथिंग इज मनी 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 मनी। तो अगर हम भक्त लोग ये समझ लें कि मनी, व्हाई आई नीड मनी, आई नीड मनी मीन्स आई हैव टू फुलफिल माय बेसिक नीड्स, शरीर की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करनी है, दैट्स द ओनली रियल फंक्शन ऑफ मनी, वेल्थ है ना। इसलिए शास्त्रों में धन किसको कहा गया है, वेल्थ, गौवा, धान्यवान धनवान और गव्यवान धनवान, जिनके पास गाय हैं और जिनके पास अनाज है वो धनवान है, क्योंकि ये रियल धन है। तो ये रियल धन के लिए तो हमको शहर की जरूरत नहीं है, ये तो हम सामूहिक रूप से जमीन पर खेती पर आश्रित रहकर गौ रक्षा के द्वारा हम ये सभी धनवान बन सकते हैं, हम सभी धनवान बन सकते हैं। तो कॉलेजेस हैं आपको एक और प्रकार से धनवान बनाने का प्रॉमिस देने के लिए, लेकिन हम आपको एक दूसरे प्रकार से धनवान बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं, गौवान धनवान, धान्यवान धनवान, सो वी कैन ऑल बिकम रिच बाय सर्विंग काउज एंड बाय डूइंग एग्रीकल्चर, और उससे भी अधिक वी कैन बिकम रिच बाय बिकमिंग रिच इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो तो आध्यात्मिक रिचनेस है, स्पिरिचुअल वेल्थ। और भौतिक दृष्टि से जो वेल्थ है वो भी यही है, गौवान धनवान, धान्यवान धनवान। सो इस तरह से ये जो फार्म कम्युनिटीज हैं इसके होने से वो असत संग छूट सकता है, गृहस्थों के लिए भी, गृहस्थ भक्तों के लिए भी। तो इसलिए बून है वरदान है ये समाज, ऐसे समाज। अब वो जो फार्म कम्युनिटीज, उसमें आने के लिए कुछ थोड़ा बहुत विपरीत दिशा में जाना होगा, क्योंकि हम विपरीत दिशा में चल पड़े हैं आधुनिक समय में। वो तो दिशा ओरिजिनली है, लेकिन हम लोग विपरीत दिशा में चल पड़े हैं, इसलिए अभी उसको रिवॉल्व, उसको दोबारा उल्टी दिशा में जाना होगा। तो वो थोड़ा सा इट मे अपीयर लिटिल डिफिकल्ट, कोई भी चीज़ चेंज करने में हमें दिक्कत तो होती है, करेक्ट। अगर आप देखें तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको शहर में आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो एनीवे दैट चेंज इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट, बट अगर हम बुद्धि से समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल है, साधु संघ हमें मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा, उसके अगर आप फायदे गिनाएंगे तो एक अलग से क्लास लेनी चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स। दत्तोग्राम प्रभु इन वन व्यास पूजा ही रोड बेनिफिट्स। तो एक सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट है साधु संघ। एक्चुअली पूरा वर्णाश्रम व्यवस्था ही असत संघ को हटा करके साधु संघ देने के लिए है, और उसमें भी ये फार्म कमेटी जो उसका बेसिस है। तो श्री प्रभुपाद ने पूरा कंप्लीट आयोजन दिया है हम सबके लिए, पूरी सोसाइटी का विकल्प दिया है, दिस मॉडर्न हेडोनिस्टिक डेमोनिक सोसाइटी। हेडोनिस्टिक समझते हैं, हेडोनिस्टिक मतलब जिनका लक्ष्य इंद्रिय भोग हो, उनको बोलते हैं हेडोनिस्टिक। तो आज का समाज हेडोनिस्टिक है एंड डेमोनियक है। इंद्रिय भोग, और इंद्रिय भोग भी कैसे पूरा करना है, आसुरी प्रकार से करना है। इवन शास्त्रों का यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र की विधि को छोड़ करके करना है। तो इस आधुनिक समाज का ये पूरा विकल्प श्री प्रभुपाद ने दिया है। इसलिए श्री प्रभुपाद का जो मूवमेंट है इस्कॉन मूवमेंट, ये केवल एक जस्ट अपने जीवन में बहुत कुछ करने को है, साथ में थोड़ा सा मन बहलाने के लिए हरे कृष्ण जप कर लिया, केवल उसके लिए नहीं है ये मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है बहुत बड़ा इसका लक्ष्य है, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरा 180 डिग्री का चेंज लाने के लिए, और पूरे समाज में 180 डिग्रीज का चेंज लाने के लिए है। क्यों लाना पड़ रहा है चेंज, क्योंकि दो रास्ते हैं, एक नरक जाता है और एक भगवत धाम जाता है, दोनों में 180 डिग्रीज का अंतर है। इसलिए मूवमेंट भी ऐसे ही होगा ना, सब लोग जो हैं वो तमो द्वारम, भगवत गीता में क्या बताया गया है, तमो के द्वार तीन, उस गेटवेज के अंदर तीन गेट्स हैं, लस्ट एंगर एंड ग्रीड, काम क्रोधस्त था लोभस, काम क्रोध और लोभ। तो जो वर्तमान आधुनिक समाज है वो इसलिए तमोद्वार है क्योंकि वो काम क्रोध लोभ ही उसका मुख्य लक्षण है, प्रमोट करता है काम क्रोध और लोभ को। इसलिए हमें निर्णय करना है कि हमें काम क्रोध लोभ वाले समाज में ऐसे लोगों का संग करना है कि नहीं करना है। सभी लोग, सामान्य लोग जो हैं वो क्या उनके जीवन का लक्ष्य है। कल हम मैनिट में गए थे तो बाहर निकले तो वो उनका वो है ना ओपन एरिया, तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, सीनियर्स एंड फर्स्ट ईयर्स। तो सीनियर जो हैं वो एक एक करके खड़े हो रहे थे और अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मैं संतोष, कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर फ्रॉम लखनऊ, हा हा, व्हाट इज सो ग्रेट, हम दिखाना है, आई एम दिस। वो सब टीवी से सीख सीख के ऐसे पागलपन जैसा व्यवहार करते हैं, सो दे आर कल्टिवेटिंग दैट, आई एम इन दिस ब्रांच, आई एम फ्रॉम दिस, मैं लखनऊ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, इट्स सो ग्रेट कि मैं यहाँ से हूँ। और कोई भी है लखनऊ से, हाँ ये भी लखनऊ, हाँ ये मेरा है, हाँ ठीक है, ओके। क्या है ये पागलपन है ना, देहात्म बुद्धि। ये जो स्टूडेंट्स हैं, देन हमारे टीचर्स क्या हैं? वो लोग टीचर्स, वो लोग भी वही कुत्ते बिल्ली की तरह से इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। स्टूडेंट के साथ में लव अफेयर करते हैं, सेक्स करते हैं, सो डिग्रेडेड मैनी ऑफ देम। और अगर ऐसे डिग्रेडेड नहीं भी हैं, सम ऑफ देम कैन बी वेरी मोरलिस्ट, लेकिन फिर भी उनका लक्ष्य क्या है? वर्किंग हार्ड टू गेट सम मनी एंड वन डे फिनिश देयर लाइफ अनोइंगली, नॉट विदाउट नोइंग वेयर दे आर गोइंग। यूजलेस, आए और गए, ऐसा हो गया। सो ऐसे लोगों का हम संग क्यों करें? हम ऐसे लोगों के साथ क्यों जिए? जितना आध्यात्मिक प्रगति आप करेंगे, उतना ही आपको स्पष्ट दिखेगा असत्संग और सत्संग में अंतर। उतना ही असत्संग में रहना बहुत सफोकेटिंग लगेगा जितना आप प्रगति कर रहे हैं। जैसे शुरू शुरू में हमको बड़ा अटपट लगेगा असत्संग क्या होता है, हम तो ठीक, वी फील कंफर्टेबल, क्योंकि हम भी उन्हीं के स्तर पर ही हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए वी डोंट फील दैट मच डिफरेंस। लेकिन अगर हमारी प्रगति हो रही है तो हमें असत्संग में वी विल फील वेरी सफोकेटेड, हमसे रहा नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारी प्रगति अच्छी हो रही है अगर हम ऐसी स्टेज में आ जाते हैं। वी कैन नॉट, सत्संग के अलावा रहना हमारे संभव नहीं है। दैट मीन्स इट्स गुड प्रोग्रेस। ओके, ये भी एक मानदंड है देखना क्या कि हमारी कितनी प्रगति हो रही है। तो ये श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये सब जो इसकी शिक्षाएं हैं बहुत ही डीप हैं। नेक्स्ट श्लोक, टेक्स्ट 3। ये वा मयीशे कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। Translation and prepared by Srila Prabhupada. Those who are interested in reviving Krishna consciousness and increasing their love of Godhead do not like to do anything that is not related to Krishna. They are not interested in mingling with people who are busy maintaining their bodies, eating, sleeping, mating and defending. They are not attached to their homes, although they may be householders. Nor are they attached to wives, children, friends or wealth. At the same time, they are not indifferent to the execution of their duties. Such people are interested in collecting only enough money to keep the body and soul together. कितनी wonderful instruction है कि ये जो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का प्रयास करते हैं वो लोग, they are interested in reviving Krishna consciousness. जो लोग कृष्ण भावनामृत को revive करने में interested हैं और भगवत धाम, भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं, वो लोग ऐसी कोई चीज नहीं करते जिसका संबंध भगवान से नहीं हो। वो इंटरेस्टेड नहीं है ऐसे लोगों के साथ मिंगल करने में जो लोग केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही रचे पसे रहते हो। हालांकि वो लोग ग्रस्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए संन्यास लेना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। कोई गृहस्थ भी रह करके भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, लेकिन वो गृहस्थ कैसा होगा? वो अपने घर से आसक्त नहीं होगा, पत्नी, बच्चों से, मित्र से, धन से आसक्त नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने कर्तव्य जो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति है, या सामाजिक कर्तव्य, वो कर्तव्य में उदासीन होगा, ऐसा भी नहीं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, लेकिन आसक्त भी नहीं होगा। तो भी दोनों चीज को समझना है, कर्तव्य परायण होना है, आसक्त नहीं होना है। हमें अपना कर्तव्य समझना है, ठीक है? अगर कोई गृहस्थ भी है तो भी समझना है मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। कर्तव्य से प्रेरित होकर के रहना है, कार्य करना है, ना कि आसक्ति से, अफेक्शन से। ओ आई लव, मेरे इनके साथ प्रेम है इसलिए मैं ये काम करूंगा, नहीं, मेरा ये कर्तव्य है। कर्तव्य शास्त्र के अनुसार जो आता है, भगवान के डायरेक्शन से आता है। अंततः हमारा सबका कर्तव्य है भगवत धाम, भगवत प्रेम प्राप्त करना। उस कर्तव्य के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे जीना है, पति को पत्नी के प्रति क्या करना है, पत्नी को पति के प्रति क्या करना है, पति पिता को पुत्रों के प्रति क्या करना है, पुत्र को पिता के प्रति क्या करना है। केंद्र है किससे, इस प्रकार से जिससे कि भगवत भक्ति डेवलप हो, और वो सब निर्देश शास्त्र में दिए, तो वो उससे प्रेरित होकर के हमें अपना कार्य करना चाहिए, ना कि आसक्ति से वो मैं अपने पत्नी के बिना रह नहीं सकता, शास्त्र क्या कहते हैं वो कुछ नहीं, पत्नी कुछ इच्छा करती है कुछ भी, हाँ तो मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, और उसको हम अपना कर्तव्य मानते हैं। वो हमारा कर्तव्य नहीं, वो आसक्ति है, वो हम नाम देते हैं कर्तव्य का, सब बोलते हैं हम अपना कर्तव्य निभाते हैं हमने, लेकिन क्या कर्तव्य को जानते हैं आप, क्या है कर्तव्य की परिभाषा? कर्तव्य मतलब जो शास्त्र के अनुसार भगवान की प्रगति, भगवान की तरफ प्रगति करने के लिए जो शास्त्र में निर्देश है उसके अनुसार रिलेशनशिप होनी चाहिए, सही गलत का निर्णय उसके अनुसार होना चाहिए, ना कि अफेक्शन, जस्ट अफेक्शन। बच्चा ऐसा मांगता है, पिता पत्नी ऐसा बोलती है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना, मेरा धर्म है ना, मैं पति हूँ इसलिए मुझे करना पड़ेगा, नहीं, आपका ये धर्म नहीं है। कोई भी अगर पति पत्नी कोई हमारे डिपेंडेंट्स, यदि इंद्रिय भोग, अनावश्यक इंद्रिय भोग के लिए भगवान के निर्देश के बिना कुछ मांग करते हैं, तो उस मांग को पूरा करना हमारा कर्तव्य नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी दिस, सो आई एम ए सन, देयरफॉर इट इज माई ड्यूटी टू डू दैट। नॉर्मली वी थिंक लाइक दैट, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, इसलिए मुझे बनना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मैं पुत्र हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है पिता की बात को मानना। पर पिता अपना कर्तव्य निभाए, हमको IAS बनाने की इच्छा उनकी क्या शास्त्र के अनुसार है या अपने इंद्रिय भोग के अनुसार है, कि उसका लड़का IAS है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरा बच्चा सबसे टॉप पे जाए, वो इज मेटेरियलिस्टिक, और अपनी भौतिकतावादी विचारधाराओं से वो इच्छा रख रहे हैं कि मेरा पुत्र ये बने, और हम सोच रहे हैं ये हमारा कर्तव्य है उनकी इच्छाओं को पूरा करना। दैट इज नॉट अवर कर्तव्य। हमारा कर्तव्य है जो धर्म के अनुसार हमारा रिलेशनशिप है उसके अनुसार कार्य करना, वो इस श्लोक में बताया। Whether he is an impersonalist or a devotee, one who is actually interested in advancing spiritually should not mingle with those who are simply interested in maintaining the body by means of so-called advancement of civilization. Those who are interested in spiritual life should not be attached to homely comforts in the company of wife, children, friends and so forth. वो घर में कंफर्ट के लिए नहीं रहता है, वो तो कर्तव्य को निभाने के लिए रहता है घर में, इसलिए वो गृहस्थ बनता है। Even if one is a grahastha and has to earn his livelihood, he should be satisfied by collecting only enough money to maintain body and soul together. तो कोई IAS बनने, शरीर के निर्वाह करने के लिए IAS ही बनना है, ऐसा नहीं, या बहुत पैसे वाला, या इतनी बड़ी कार होनी चाहिए, या इतना बड़ा बंगला होना चाहिए, ये तो केवल अनावश्यक आवश्यकता है, ये तो काम है, दिस इज नॉट द बेसिक नीड्स। तो अगर हमारे माता पिता हमसे ऐसी इच्छा रख रहे हैं कि हम जो उनकी काम वासनाएं हैं, देखा देखी इतना, हमारा भी इतना बड़ा घर होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, अगर ऐसी उनकी इच्छाएं, तो उनको इच्छा, वो इच्छाएं पूरा करना हमारा कर्तव्य नहीं। हाँ, आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करना उनकी, वो हमारा कर्तव्य है, अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो माता पिता की शरीर की देखभाल करना वो हमारा कर्तव्य है, उनके शरीर के लिए जो चाहिए, उनके शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान, वो हमारा कर्तव्य है। पर नहीं कि अगर पिता की चाहे कि बेटे हमें तो अमेरिका घुमा के लेके आओ और तुम भी अमेरिका जाओ, हम भी वहाँ जाएंगे और रहेंगे, मजा करेंगे, वो हमारा कर्तव्य नहीं। One should be satisfied by collecting only enough money to maintain body and soul together. अगर भक्ति करनी है तो ये बात समझनी होगी कि हमें केवल शरीर के लिए जितना जरूरी है उससे संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे संतुष्ट नहीं है तो फिर वो भौतिकतावादी बन गए, मेटलिस्ट, फिर वो ही ग्रीड, लोभ, फिर वो तमोद्वार है, वो भक्ति की तरफ नहीं है वो। और अगर हम आधुनिक समाज में निर्भर रहते हैं तो आधुनिक समाज तो वही ग्रीड के ऊपर ही बेस है, तो हमें ना चाहते हुए भी उसी ग्रीड का ही भाग बनना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क फॉर द ग्रीड ऑफ अदर्स, इवन इफ वी आर नॉट ग्रीडी अवर सेल्फ, वी विल हैव टू वर्क फॉर द ग्रीड ऑफ अदर्स। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप ग्रीडी नहीं है, आप भक्ति समझ रहे हैं, मुझे तो बस दो जून की रोटी मिल जाए मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन आपका जो मालिक है वो तो ग्रीडी है और आप उसके एम्प्लॉई हैं, सो यू विल बी वर्किंग फॉर फुलफिलिंग हिज ग्रीड, इज इट नॉट, बिकॉज यू आर हिज सर्वेंट, यू आर हिज एम्प्लॉई। इसलिए वो भक्तों के समाज में कृषि गोरक्षा पे आश्रित होगा, और भक्तों के ऊपर अगर हम आश्रित भी होंगे, अगर हम सर्वेंट भी हैं, अगर भक्तों के हैं तो भक्त जो हैं वो उनका जीवन भी सरल होगा तो हमारा जीवन भी सरल होगा, क्योंकि उनको ग्रीड नहीं है तो वो हमको ग्रीड में नहीं लगाएंगे। लाइक दैट वन शुड नॉट हैव मोर देन नॉर लेस देन दैट। ऐसा भी नहीं है कि जो आवश्यकता है उसके लिए भी हम काम नहीं करें, आलसी बन जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोभ के कारण भागते रहें देखा देखी। तो ये सब जो प्रिंसिपल्स हैं ये फार्म कम्युनिटी में एग्जैक्टली फॉलो हो सकते हैं, बाहर समाज में हो नहीं सकते हैं, क्योंकि समाज इतना बड़ा वो उसके ऊपर बेस्ड है ना, ग्रीड के ऊपर। आप उसके छोटे से पुर्जे हैं, आप चाहते भी उससे कैसे अलग रहेंगे। यू विल हैव टू रन इन द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन एज द होल बिग सोसाइटी इज मूविंग एंड रनिंग एट। एज इंडिकेटेड हियर ए हाउस होल्डर शुड एंडेवर टू अर्न मनी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति योगा। एक हाउस होल्डर को पैसा क्यों कमाना चाहिए? श्रवणम कीर्तन करने के लिए। घर इसलिए चाहिए जिससे कि उसमें रह के साधना हो सके, जिसको को भजन कुटीर कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपना घर बनाए हुए भजन कुटीर है, हमें कुटीर भजन के लिए होनी चाहिए, इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं। करेक्ट। तो एक गृहस्थ भक्त को पैसा कमाना है किसलिए? शरीर की देखभाल करने के लिए। और शरीर की देखभाल किसलिए करनी है? श्रवणम कीर्तनम करने के लिए, दैट्स ऑल। तो श्रवणम कीर्तनम के लिए शरीर को निर्वाह करना है, तो शरीर को निर्वाह करने के लिए फिर जो बेसिक है वही करना हो। तो हाउस होल्डर शुड अर्न मनी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म। जैसे गृहस्थ भक्त जो है वो जो पैसा जो भी कमाते हैं उससे अर्च विग्रह, घर में अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए, उनके लिए पुष्प लाने के लिए, उनके लिए नैवेद्य, उनके लिए श्रृंगार, और वो प्रसाद वितरण करना दूसरों को, उससे उनकी भक्ति बढ़ेगी। अतिथि भक्तों को सेवा, प्रसाद सेवा करना, इस मूवमेंट के लिए प्रचार के लिए धनलक्ष्मी डोनेशन देना, इस उद्देश्य से वो कमाते हैं। तो उनका जो कमाना है वो स्पिरिचुलाइज हो जाता है, फिर कमाने के टाइम में उनका वो बुद्धि में वो भौतिकतावाद नहीं आता है, दे आर डूइंग इट फॉर स्पिरिचुअल। वो गृहस्थ आश्रम है, वो भक्त गृहस्थ भक्त हैं, वो ऐसा जीवन वो गृहस्थों का होना चाहिए। ए हाउस होल्डर शुड लीड सच अ लाइफ दैट ही गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड चैंट। व्हाट अ वंडरफुल इंस्ट्रक्शंस। ए हाउस होल्डर शुड लीड सच अ लाइफ दैट ही गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड चैंट। एक गृहस्थ को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि उसको श्रवण और कीर्तन के लिए पर्याप्त मात्रा में समय और मन की शांति मिल सके। अब आधुनिक जीवन में यही समस्या है, वहां पर जो गृहस्थ लोगों का जीवन है
उसमें ये बड़ा मुश्किल है। करेक्ट।
मयंक हैज नाउ सम मोर क्लोज एक्सपीरियंस ऑफ दैट, क्योंकि ये संसार जो मॉडर्न जो सोसाइटी बनी है वो हियरिंग एंड चैंटिंग के लिए नहीं बनी है। वो तो लोभ के लिए बनी है, लोभ के पीछे भागने के लिए। ही शुड वर्शिप द डेटी एट होम, गृहस्थों के लिए। आप डेटी रखेंगे तो डेटी, आप डेटी वर्शिप करेंगे तो बहुत समय चाहिए उसके लिए। तो आप आधुनिक समाज में रहेंगे तो आपको कहां समय मिलेगा? हियरिंग चैंटिंग का समय नहीं है, डेटी वर्शिप तो बहुत दूर की बात है। ऑब्जर्व फेस्टिवल्स, इनवाइट फ्रेंड्स इन एंड गिव देम प्रसाद, ये है गृहस्थ जीवन। फेस्टिवल्स बुलाएं सबको, अड़ोसी पड़ोसी संबंधी, और उनको कृष्ण प्रसाद दें, कृष्ण कथा करें, नहीं कि लाके बैठ करके डिस्को करें और उल्टा से सुने शादी हुई है सब। दादा दादी पिता माता बहन भाई सब बैठ करके गाना सुनते हैं, चित्रहार फिल्म सॉन्ग देखते हैं जिसमें पूरा वल्गैरिटी होती है, लिरिक्स आप देखिए वो सब वल्गर होते हैं, एंड वी ऑल टुगेदर एंजॉय। दादा से लेकर के तीन पीढ़ी तक बैठ करके वो वल्गैरिटी को सुनते हैं, एंड दिस इज फेस्टिवल, टुडे इज फेस्टिवल। क्या है लिरिक्स हमारे सारे सॉन्ग्स के? वल्गैरिटी ना, वल्गैरिटी एंड जस्ट मैडनेस। और ये इस तरह से हम एंजॉय, ये हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, किसी का बर्थडे हुआ, किसी का शादी हुआ, ये गाने बजाएंगे हम लोग। ये क्या पागलपन नहीं है? ए हाउस होल्डर शुड अर्न मनी फॉर दिस पर्पज, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो पैसा कमाने की मनाही नहीं है, जीवन के लिए गृहस्थ आश्रम पैसा चाहिए। पैसा चाहिए मतलब वही पैसे का रियल पैसा है, वो वेल्थ, रियल वेल्थ। और अगर हम उस सोसाइटी में नहीं है तो आधुनिक उसमें भी तो ठीक है, वहां पर कुछ मनी की जरूरत है तो ठीक है, लेकिन दैट शुड बी द पर्पस, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, आधुनिक समाज में है तो ठीक है, वहां शुरुआत हो सकती है, लेकिन कठिनाई होगी उसमें, क्योंकि वो समाज उसके लिए बना नहीं है, अनप्रतिकूल है। सो वी कैन मेक ए बिगिनिंग, अगर वो सोसाइटी नहीं है, वो सेटअप नहीं है, बट डायरेक्शन वही होनी चाहिए, दैट वी शुड गो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, वही होनी चाहिए। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन? क्योंकि वो तो वास्तविक धन को उनको भुलाया जा रहा है ना, उनको एडवर्टाइजमेंट्स, ये धन है, देखो कार है, ये है, कंफर्ट्स है। तो सामान्य लोग भोले भाले होते हैं, उनको जैसा सिखाया था वैसा सीख लेते हैं वो लोग, उनकी अपनी बुद्धि इतनी तेज नहीं होती समझने की क्या सही है क्या गलत है। इसलिए MBA कर करके बहुत चतुर लोग हैं जो उन सबको, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं कि ये आ जाओ, ये लाइफ है, ये है, ये है, पूरा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है जो, और सब जगह पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी गांव में, गांव वालों का भला करने के लिए, करेक्ट। और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी से फिर TV आ गए, इंटरनेट आ गया, है ना, और फिर इस इंटरनेट के द्वारा दिखाया कि तुम जो जीवन जी रहे हो सब बेकार है, वो देखो कितना बढ़िया है। तो फिर सब लोगों के अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो गया है, हम क्यों ये खेती करें सब बेकार चीज, अपना जीवन खराब कर रहे हैं, हम भी आराम से जाएंगे। और फिर जब वहाँ आते हैं तो उनको पता लगता है वहाँ क्या आराम है, लेकिन वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं शहर का जो जीवन है उसमें क्या आराम है। गाँव में वो लोग शुद्ध दूध पीते थे, इतना अच्छा हेल्थ था, स्वच्छ हवा थी, पानी था, है ना, लेकिन वो मिथ्या सुख के लिए कि आपको एक कार मिलेगी, है ना, जिसमें आपका एक्सीडेंट होगा, टांग टूटेगी, और जिसमें आप जो है वो सब पोल्यूशन वाली हो लेंगे, हाँ, वो एक छोटे से चप्पल सुख, एक मिथ्या सुख के लिए उनको आकर्षित करके, इवन मटेरियली जो वास्तविक सुख था, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा परिवार जिसमें सब एक साथ रह सकें, वो सबको वो लोग तोड़ देते हैं, बिकॉज दे आर मिसलेड, उनका उनका उनको पथ भ्रष्ट किया जा रहा है बाई प्रोपागेंडा। क्यों? क्योंकि इनको जो है शहर वालों को, उनको पैसा चाहिए, उनसे भी कमाना है, कंज्यूमर्स चाहिए उनको। अगर ये गांव वाले लोग संतुष्ट रहेंगे अपने गाय से और खेती से, तो उनके मोबाइल्स कौन खरीदेगा? सो दे हैव टू टीच कि दिस यू नीड मोबाइल, यू नीड दिस, आपका जीवन इसके लिए बिना बेकार है। और इसके लिए कितना पैसा लगाते हैं आप जानते हैं? कोई भी कंपनी जो है अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ह्यूज अमाउंट इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। क्यों इतना एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती है? आधारभूत आवश्यकताओं के लिए कभी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ती है? दाल खानी है तो खानी है, उसको दाल उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने आप आवश्यकता होगी अपने आप खाएगा। लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अनावश्यक चीजें उसके लिए सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उनकी इच्छाओं को जागृत करना पड़ता है। कोका कोला को बेचने के लिए आपको बहुत एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ये अदरवाइज जब आधा, इसलिए पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं थे ना, क्या एडवर्टाइजमेंट पड़ी है? बाजार में है, मार्केट लगा है, उसमें अपने आप आएंगे लोग अनाज खरीदने के लिए, अनाज की जरूरत है अनाज खरीदने आएंगे अपने आप, उसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, है ना। सो दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा।
रिक्शे वाले के बेटे ने किया यूपीएससी क्रैक, इस गांव के लड़के ने किया IIT में क्रैक, और फिर हो गया वो खुद क्रैक.
इसी भी उनको बुलाया जाता है कि वो भी अपने बेटा को भेजेंगे शहर में.
यस, सब प्रोपेगेंडा है. बहुत बड़ा बन गया, अफसर बन गया बच्चा. पहले उसकी अपनी खेती थी, वो गुलाम नहीं था. अभी बहुत बड़ा गुलाम बन गया, अफसर बन गया, मतलब गुलाम बन गया. मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि आप कम से कम जो जो आदमी किसान था वो अपना वो स्वावलंबी जीवन उसका था, और अभी वो गुलाम बन गया. थर्ड क्लास या आईएएस भी क्या है, सारे मिनिस्टर्स जो थर्ड क्लास गुंडे होते हैं उनके इशारों पर उनको नाचना पड़ता है. आईएएस ऑफिसर्स को हम सोचते हैं आईएएस ऑफिसर बहुत बड़ी चीज़ है. जब बनोगे तब पता लगेगा क्या होता है. क्या जीवन है उनका. दे आर एक थर्ड क्लास इडियट. उनको आकर के चलो वहाँ से ट्रांसफ़र, क्या उनकी हैसियत है उनके सामने. आपने इतनी पढ़ाई की, आप इतना आपकी इंटेलिजेंस थी, एक ऐसे थर्ड क्लास पॉलिटिशियन का गुलाम बनने के लिए. कंपनी में है ये सब. सो वो सब प्रोपेगेंडा, पागलपन है. हिरण्यकशिपु का नौकर बनना अच्छी बात नहीं है. करेक्ट, हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा ऑफिसर, बहुत बड़ा मालिक है. लेकिन उसका ऑफिसर बनने से हम असुर बनेंगे, दैट्स इट, और हमारा शोषण होगा. हरे कृष्ण. यस,
व्हाट अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस.
मेडिक्लेम, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो पूरी अभिव्यक्ति है जिसमें कि गोइंग बैक टू लैंड भी एक मूवमेंट है, जिसमें फार्म कम्युनिटीज़ हैं वो भी कृष्ण भावनामृत का एक अंग है, तो उसमें मेडिक्लेम ऑलरेडी है, क्योंकि इट्स क्लेम्ड दैट यू विल नॉट गेट सिक अननेसेसरली. सो देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेडिक्लेम. सो आप जो है स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, और जो भी बीमारियाँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी होंगी भी, तो वो भी वो आसपास में मिलने वाली जड़ी बूटियों से ठीक होंगी. और अंत में ओल्ड एज आएगी, और उसके लिए हम लोग प्रयास नहीं करेंगे कि हमें लड़ना है ओल्ड एज से, हमें तो मरना ही नहीं है कुछ भी है. नी रिप्लेस कराएंगे, लीवर रिप्लेस कराएंगे, किडनी रिप्लेस कराएंगे, ब्रेन हो जाएगी तो ब्रेन भी रिप्लेस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे. वो हमारा वहाँ पर टारगेट नहीं रहेगा. सो वी डोंट नीड दैट मेडिक्लेम्स. और लाइफ इंश्योरेंस, आज के जीवन में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आश्रित को पैसा मिलता है. लेकिन वैदिक संस्कृति में एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं, तो घर में ऐसी दुर्घटना घटती है तो वो एक्सटेंडेड फैमिलीज उसको और पूरा गांव उसको संभालता है. दैट वाज द कल्चर. उसको तोड़ दिया गया है, उस कल्चर को, एक्सटेंडेड फैमिलीज का कंसेप्ट को हटाया गया है. पहले भाई वो ये समझ होती थी कि पिता के जाने के बाद जो बड़ा पुत्र है वो पिता के तरह से सबका देखभाल करेगा, इसलिए उसको बंटवारा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी प्रॉपर्टी को, है ना. लेकिन आज वो कल्चर ख़त्म हो गई है, इसलिए भाई भाई में झगड़ा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कंसेप्ट आ गया है कि एक्सटेंड फैमिली नहीं है और एक पिता की जो प्रॉपर्टी है वो सबकी प्रॉपर्टी है, इसलिए झगड़ा उत्पन्न हुआ है इसकी वजह से. एंड देन एक्सटेंड अभी न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से फिर लाइफ इंश्योरेंस जरूरत पड़ती है कि, और हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ इतने सारे हादसे होते रहते हैं. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर सो कॉमन. सो देयरफॉर वी नीड मोर दिस लाइफ इंश्योरेंस. बट वैदिक सोसाइटी में अपना एक इंश्योरेंस का तरीका है, बाई लिविंग टुगेदर इन विलेजेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर. वो इंश्योरेंस है मेटेरियल लेवल पर. एनीथिंग एल्स. श्रील प्रभुपाद की जय.